समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
बहुत छोटी है, इसे ऐसे लोगों के साथ बिताएं जो आपको हंसाएं, खुश रखें और आपको महसूस कराएं कि आप उनके लिए कितने जरूरी हैं। इसी सुविचार के साथ आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर शुरू करते हैं आज सवेरे कार्यक्रम। कार्यक्रम में हम एक बार फिर हाजिर हैं देश दुनिया के अब तक के समाचार और वो सभी जानकारी लेकर जिनका आपसे है सरोकार। नमस्कार, सुप्रभात। आज सवेरे के संघ के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रेनु कटारिया। रेनु, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार मुकेश, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी FM गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग यू डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, वेयर इन वी गिव यू द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, Metro City updates, as well as some historical information related to this day, that is the 29th of November. So, Mukesh, let's begin with the headlines first.
जी हाँ, सबसे पहले मुख्य समाचारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन में आज विभिन्न सत्रों की अध्यक्षता करेंगे। तीन दिन का यह सम्मेलन कल नवा रायपुर के भारतीय प्रबंधन संस्थान में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक भी प्रदान करेंगे। इस वर्ष का विषय है विकसित भारत, सुरक्षा आयाम। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कल इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये सम्मेलन देश की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण मंच है। नक्सलवाद के बारे में श्री शाह ने कहा कि पिछले 7 वर्ष में केंद्र सरकार ने 586 पुलिस स्टेशन बनाकर सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 2014 में 126 से घटकर आज केवल 11 रह गई है। श्री शाह ने कहा कि अगले सम्मेलन से पहले देश नक्सलवाद के खतरे से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने देश के नासूर जैसी तीन प्रमुख चुनौतियों, नक्सलवाद, पूर्वोत्तर में उग्रवाद और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का स्थायी समाधान दिया है।
Election Commission EC has issued a point-by-point rebuttal to all apprehensions and termed the allegations made by the TMC delegation as baseless. A 10-member delegation led by Rajya Sabha MP Derek O'Brien met the Election Commission in New Delhi yesterday over the issue of ongoing Special Intensive Revision SIR of electoral rolls in West Bengal. The commission asked the delegation to submit claims and objections after 9th of December when the draft list is shared with them. The commission said till then the party should not interfere with the independent functioning of booth level officers, election registration officers and district election officers who are state government employees on deputation to election related works. The commission also wrote a letter to Director General Police of West Bengal and Kolkata Police Commissioner to ensure that the BLOs are not pressurized and threatened by the political party workers. The poll body has also directed all DEOs to ensure new polling stations in slums, high-rise buildings and gated residential colonies, as is being done across India based on its instructions. Based on recent incidents relating to breach of security at the office of Chief Electoral Officer of West Bengal, the Election Commission has directed the office to be shifted to an appropriate security location. EC has also directed Kolkata Police Commissioner to ensure complete security of the existing as well as the new office of CEO. EC has also told the TMC delegation to not influence or threaten the BLOs regarding dead, shifted and duplicated voters. The poll body also reminded the TMC delegation that only Indian citizens are entitled to vote, and as per Article 326 of the Constitution, Foreigners cannot be allowed to vote.
भारत ने दित्वा चक्रवात से प्रभावित श्रीलंका को राहत सामग्री और आवश्यक मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए कल ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। श्रीलंका में इस प्राकृतिक आपदा के कारण 61 लोगों की मौत हो गई और 25 अन्य लापता हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि INS विक्रांत और INS उदयगिरी ने कोलंबो में राहत सामग्री पहुंचाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दित्वा के कारण अपने प्रियजनों को खोने वाले श्रीलंका के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। इस बीच तूफान दित्वा से चेन्नई और श्रीलंका के बीच उड़ानों पर भी असर पड़ा है। उड़ानों में देरी के कारण उनका मार्ग बदल दिया गया है या उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अधिक जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें।
India has been re-elected to the Council of the International Maritime Organization, IMO, for 2026-27 with highest vote tally. The council elections were held during the 34th session of IMO Assembly in London. India secured the highest number of votes in the category comprising 10 countries with the largest interest in international seaborne trade. It received 154 out of 169 valid votes cast during the election. Union Minister of Ports, Shipping and Waterways, Sarbananda Sonowal, expressed his delight on the achievement, saying that it is a proud moment for India's maritime sector. The ministry in a statement asserted that India's highest vote tally reflects the international community's strong confidence in India's constructive leadership in global shipping. The result further validates the Government of India's sustained reforms and forward-looking initiatives to strengthen the maritime sector. The IMO Council consists of 40 elected members across three categories and functions as the executive body of the IMO between sessions of the Assembly. The Ministry added that this is the second consecutive biennium in which India has secured the highest tally in Category B, reaffirming the nation's commitment to the Amrit Kaal Maritime Vision 2047.
और अब खेल जगत की दुनिया की जानकारी लेकर स्टूडियो पहुंच चुके हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार बल। मुकेश, कहां से शुरू कर रहे हैं खेलों की खबरें?
जी, खेल खबरों में सबसे पहले शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खेल हॉकी से। भारत ने कल चेन्नई में पुरुष FIH हॉकी जूनियर विश्व कप के अपने पहले मैच में चिली को 7-0 से हरा दिया। मौजूदा चैंपियन जर्मनी, अर्जेंटीना और बेल्जियम ने भी अपने अपने पहले मैच जीत लिए हैं। भारत पूल बी में चिली, ओमान और स्विट्जरलैंड के साथ है। भारत दो बार ये खिताब अपने नाम कर चुका है। और मुकेश, अगर बात करें फुटबॉल की तो भारत की अंडर-20 महिला फुटबॉल टीम आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में FC मद्रास अकादमी में उज्बेकिस्तान के खिलाफ दो मैत्री मैचों में से पहला मैच खेलेगी। ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार शाम 5 बजे से शुरू होगा। दूसरा मैच मंगलवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। और रुख करें बैडमिंटन कोर्ट का तो भारत की तन्वी शर्मा, उन्नति हुड्डा और किदाम्बी श्रीकांत सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। लखनऊ में महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने हांगकांग की सिन यान हैप्पी लो को हराकर अंतिम चार में जगह बनाई। अब उनका सामना जापान की हिना अकेची से होगा। उन्नति हुडा ने भी बढ़त बनाते हुए देश की ही रक्षिता रामराज को हराया। अब उनका सामना तुर्की की नेस्लीहरन एरिन से होगा। पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। उनका मुकाबला अब मिथुन मंजुनाथ से होगा। महिला डबल्स में गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जौली की जोड़ी ने बेंगिसु एरसेटिन और नाजलिकन इंसी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। मिक्स्ड डबल्स में त्रिशा जौली और हरिहरन अमसकरुणन ने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। जी मुकेश, खेल जगत से बस आज इतना ही।
थैंक यू मुकेश। एंड वी मूव ऑन टू इफी नाउ। The star-studded closing ceremony of 56th International Film Festival of India, IFFI, on Friday ended on a high note, with superstar Rajnikanth being honored with a Lifetime Achievement Award for his 50 years in cinema. Superstar Rajnikanth was honored by Goa Chief Minister Pramod Sawant with a shawl and memento at the closing ceremony of IFFI. Icons of Indian film industry remembered towering personalities who passed away this year, including Dharmendra, Kamini Kaushal, Sulakshana Pandit and Satish Shah. Our correspondent has filed this report. Curtains descended on IFFI 2025 with a glittering closing ceremony last night. Chief Minister Pramod Sawant paid tributes to the he-man of Indian cinema, Dharmendra. The stage shone like a galaxy of colourful stars, quite literally, when Rajnikanth was felicitated for his contribution to Indian cinema through 50 years. Another big surprise for everyone was Ranveer Singh's captivating and energetic presence on the stage. The Golden Peacock for the Best Feature Film at IFFI 2025
was backed by Ashley Mayfair's Skin of Youth. The Vietnamese drama follows the precarious lives of San and Nam and their struggle for love and identity in 1990s Saigon. The Silver Peacock for Best Director of a Feature Film was awarded to Santosh Dhavakar for Gondhal. Akinola Davis Jr. won the Special Jury Award for his movie My Father's Shadow. Upima Rios bagged the award for Best Actor Male, while Hyara Sophia Ostan won the Best Actor Female for Little Troubled Girls. Silver Peacock for Best Debut Feature Film was jointly awarded to Hisham Farhaman's My Daughter's Hair and Tony Spill's Frank. The prestigious ICFT UNESCO Gandhi Medal went to the movie Safe House, directed by Eric Swanson, recognizing the director's unique artistic story. Some other notable awards that were given during the awards ceremony last night were Best Debut Director for Indian Feature Film to Karan Singh Tyagi for his critically acclaimed film Kesari 2 and OTT Best Indian Panorama Award to Bandish Bandits 2. The ceremony marked a memorable end to the festival, celebrating creativity, innovation and the enduring spirit of filmmaking. And even though IFFI 2025 has ended, keep celebrating the magic of cinema. With Adarsh and Nikhil, Saira Mushtaba from IFFI, Goa.
और आज सवेरे कार्यक्रम में अब वक्त है मेट्रो न्यूज का, तो रेनु सबसे पहले आप चेन्नई की खबरें हमारे श्रोताओं को बताएं।
जी बिल्कुल, द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास विल पे 95 crore rupees टू द रिटायर्ड स्टाफ फ्रॉम इट्स कॉर्पस फंड. This decision will further weaken the university's final situation as it is paying the monthly pension from the interest of the corpus fund. The corpus fund is created for the pensioners and a portion of it will be accessed to disburse the pension benefits to more than 450 pensioners, family pensioners who retired between 2015 and 2025. More news. Bureau of Indian Standards organized a jeweler awareness program on hallmarking in Kanchipuram yesterday. The program aimed to enhance awareness among jewelers on BIS hallmarking standards, regulatory requirements and the digital services offered by BIS for seamless compliance. The program witnessed participation from jewelers, representatives of local jewelers association from Kanchipuram district. S.D. Dayanand, Director and Head of BIS Chennai Branch Office, highlighted BIS's continued efforts to ensure consumer protection through standardization, certification and hallmarking, and emphasized the importance of jewelers adhering to quality and purity standards. He encouraged participants to actively use BIS Care app for consumer grievance redressal, license verification and product authentication. और एक लास्ट न्यूज जो चेन्नई मेट्रो से हमारे पास है मुकेश. चेन्नई मेट्रोज फेज टू विल फीचर इट्स मोस्ट स्ट्राइकिंग बेंड विच विल बी अ 413-meter स्ट्रेच ओवर काठीपारा दैट कनेक्ट्स एयरपोर्ट एंड गुइंडी रोड. द अपकमिंग अलाइनमेंट ऑन कॉरिडोर 5 इंक्लूड्स अ टाइट 125-meter रेडियस कर्व अलाउिंग ट्रेन्स टू पास अबव मेजर रोड्स वाइल मेंटेनिंग बैलेंस एंड स्पीड थ्रू एन एलिवेटेड पाथ. Metro coaches will move from nearly 33 meters down to 27 meters as they approach Alandur, keeping a steady 35 kilometers per hour. The curve is expected to be completed by February, marking a major leap for Phase 2 and adding a unique spectacle for passengers who will experience rare city views. और अब आपके पास चलते हैं मुंबई की खबरों के लिए.
जी हाँ, बम्बई उच्च न्यायालय ने कहा है कि मुंबई की खराब वायु गुणवत्ता से निपटने में समय लगेगा, लेकिन मौजूदा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने से निर्माण गतिविधियों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है. अदालत मुंबई में बिगड़ती वायु गुणवत्ता सूचकांक को उजागर करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि 2023 से ये लगातार बिगड़ रहा है. प्रसिद्ध मराठी कवि और व्यंग्यकार डॉक्टर मिर्जा रफी अहमद बेग का कल निधन हो गया. वे पिछले कुछ दिनों से गुर्दे की बीमारी से पीड़ित थे और अमरावती में उनका इलाज चल रहा था. बेग 68 वर्ष के थे. उनके परिवार में पत्नी फातिमा मिर्जा, बेटा रमीज और दो बेटियां महजबी और हुमा हैं. पश्चिम रेलवे मुंबई साइक्लोथॉन 2025 के लिए कल विरार से बांद्रा तक दो विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। पश्चिम रेलवे ने यात्रियों को इन विशेष रेलगाड़ियों में अपनी साइकिलें ले जाने की अनुमति दी है, जिससे साइक्लोथॉन के संचालन को बढ़ावा मिला है और अधिक से अधिक प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य मुंबई साइक्लोथॉन में भाग लेने वाले साइकिल चालकों के लिए सुरक्षित, समय पर और पर्यावरण के अनुकूल यात्रा सुनिश्चित करना है। और यात्रियों की सुविधा के लिए मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 28 नवंबर से मेट्रो 3 के मेट्रो कनेक्ट 3 मोबाइल ऐप पर रियायती मासिक पास उपलब्ध करा दिए हैं। मेट्रो 3 मोबाइल ऐप के जरिए पास सुविधा देने वाली देश की पहली मेट्रो बन गई है। 60 ट्रिप वाले पास पर 15% और 45 ट्रिप वाले पास पर 10% की छूट है। ये पास यात्रा को और अधिक किफायती बनाने और टिकट खरीद प्रक्रिया को आसान, डिजिटल और संपर्क रहित बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो बेंगलुरु से आपके पास क्या खबर है?
कर्नाटका चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया हैज सेड दैट ICDS इज अ विजनरी स्कीम टू एलिमिनेट मदर चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड मालन्यूट्रिशन। ही वाज स्पीकिंग एट एन इवेंट टू सेलिब्रेट द गोल्डन जुबली ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम इन कर्नाटका, चिल्ड्रंस डे, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे एंड अवार्ड सेरेमनी एंड द लॉन्च ऑफ एम्बिशियस स्कीम्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन बेंगलुरु यस्टरडे। ही नोटेड दैट ICDS हैज बेनिफिटेड ओवर 40 लाख विमेन एंड चिल्ड्रन थ्रू 69,922 आंगनवाड़ी सेंटर्स इन द स्टेट। द चीफ मिनिस्टर प्रेज द आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स, सेइंग दे सर्व विद डेडिकेशन एंड आर लाइक अ सेकेंड मदर टू द चिल्ड्रन इन देयर केयर। The chief minister said that if women do not become economically and socially self-reliant, it is difficult for society to progress. He further said that women must achieve 100% literacy and they must also gain rational and scientific knowledge. Mr. Sidharamaiah informed that so far the government has spent over ₹1,04,000 crore on the guarantee schemes.
और कोलकाता की खबरों की बात करें तो कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल सरकार की रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर नाराजगी व्यक्त की है। राज्य सरकार ने रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए और समय देने का अनुरोध किया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजय पॉल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ ने कहा कि इससे पहले भी राज्य सरकार ने रिपोर्ट जमा करने के लिए समय की मांग की थी। न्यायालय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाना राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। इस बीच उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को इस मुद्दे पर रिपोर्ट देने के लिए एक सप्ताह का समय और दिया है।
एंड मूविंग ऑन टू हैदराबाद मेट्रो मुकेश, Telangana State Governor Jishnu Dev Verma has launched the North East Connect Association or NECA Telangana at the closing ceremony of Telangana North East Connect 2025 festival held at Raj Bhavan in Hyderabad. NECA President Paparao B and Vice President Gautam Sawang said in a statement that the platform will serve as a bridge between communities and help strengthen the relationship between the people of Telangana and the Northeast Indian community. The founding members of this society come from distinguished backgrounds in public service, health, law, academia, sports, entrepreneurship, and are well connected with the Northeastern states. And Mukesh, ab hame bataiye ki Delhi ki kya khabrein hain?
जी हाँ, दिल्ली विश्वविद्यालय अगले वर्ष 12 फरवरी से 14 फरवरी तक साहित्य महोत्सव आयोजित करेगा। ये महोत्सव दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ साथ राष्ट्रीय पुस्तक न्यास यानी NBT और अन्य साहित्यिक संस्थाओं के सहयोग से कराया जाएगा। इसका केंद्र बिंदु राष्ट्रप्रेम होगा। इस दौरान पुस्तक विमोचन और पुस्तक चर्चाओं का भी आयोजन किया जाएगा। दिल्ली के राजघाट पर 6 दिसंबर को एक चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती तथा वंदे मातरम के 150 वर्ष के उपलक्ष में रखी गई है। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रतिभागी 3 दिसंबर तक पंजीकरण करा सकते हैं। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्ड के कल होने वाले उपचुनाव को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल सेवा सभी टर्मिनल स्टेशनों से सवेरे 4 बजे से शुरू हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया कि रेल सेवा सवेरे 6 बजे तक 30 मिनट के अंतराल पर चलेगी। इसके बाद रविवार की समय सारणी के हिसाब से नियमित सेवाएं मिलेंगी। सभी टर्मिनल स्टेशनों से आखिरी मेट्रो रात 11 बजे की जगह 11:30 बजे निकलेगी और 3 दिसंबर यानी बुधवार को मतगणना वाले दिन भी मेट्रो सेवा सवेरे 4 बजे से शुरू होगी। और हिंदू राव अस्पताल ने कल 75वें स्थापना दिवस पर एक समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह मुख्य अतिथि थे। श्री सिंह ने अस्पताल के 75 वर्ष पूरे होने पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिंदूराव अस्पताल ने सदैव जरूरतमंद नागरिकों को सहानुभूति, देखभाल और समर्पण के साथ उपचार किया है। और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के साथ संयुक्त अभियान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चल रहे एक प्रमुख अफ्रीकी ड्रग गिरोह का भंडाफोड़ कर 6 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 12 करोड़ रुपए की 460 किलोग्राम से अधिक मात्रा में अलग अलग प्रकार के मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे मुकेश कुमार और रेनू कटारिया के साथ। और आज सवेरे में वक्त हुआ है मौसम का हाल जानने का, तो सबसे पहले रेनू दिल्ली का मौसम बता दें श्रोताओं को।
बिल्कुल,
तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सवेरे काफी ठंड रही। आज का अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। कोलकाता में सुबह कोहरा छाया रहा और बाद में आसमान साफ रहेगा। आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री के आसपास रहेगा। और मुंबई में भी आज धुंध के साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहे। अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
मूविंग ऑन टू चेन्नई मुकेश, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ जनरली क्लाउडी स्काई विद हेवी रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 24 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 28 डिग्रीज। Bengaluru is expected to have a generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 18 degrees Celsius and the maximum will be around 25 degrees. And Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between a minimum of 17 degrees and a maximum of 29 degrees Celsius.
और अब समय है इतिहास के पन्नों को पलटने का और उन घटनाओं पर नजर डालने का जो आज के दिन का इतिहास बन गई। आज 29 नवंबर है और आज ही के दिन 1516 में फ्रांस और स्विट्जरलैंड ने फ्रेबर्ग के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए और 1775 में सर जेम्स जे ने अदृश्य स्याही का आविष्कार किया।
टॉकिंग अबाउट दिस डे मुकेश, आज एक बहुत ही खास दिन है। Today is International Jaguar Day, which is being observed globally.
जी.
The day was created to raise awareness about the increasing threats facing the jaguar and the critical conservation efforts ensuring its survival. International Jaguar Day celebrates the America's largest wild cat as an umbrella species for biodiversity conservation and an icon for sustainable development and the centuries-old cultural heritage of Central and South America. This is the third largest cat predator of the world and an important species of Amazon rainforest.
और 1830 की बात करें तो आज ही के दिन पोलैंड में रूस के शासन के खिलाफ नवंबर विद्रोह शुरू हुआ था। 1870 में आज ही के दिन ब्रिटेन में आवश्यक शिक्षा कानून लागू हुआ था और 1889 में बेंगलुरु के लाल बाग गार्डन में ग्लास हाउस की आधारशिला रखी गई थी।
ऑन दिस डे इन 1929 अमेरिकन पायनियर एविएटर रिचर्ड ई बर्ड फ्लू ओवर द साउथ पोल। इन 1947 द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली पास्ड रेजोल्यूशन 181 व्हिच कॉल्ड फॉर द पार्टीशन ऑफ पैलेस्टीन। In 1961, Yuri Gagarin, the world's first human in space, visited New Delhi as part of a multi-city tour. In 1970, on this day, Haryana became the first Indian state to achieve 100% rural electrification. Aur aaj ek aur bahut khaas din hai, 2008 mein aaj ke din, that is 29th of November, Mumbai was declared terror-free After the 26/11 attack.
और 1999 की बात करें तो महाराष्ट्र के नारायण गांव में विश्व का सबसे बड़ा मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप खुला था। और 2008 की जैसे आपने बात की, आज ही के दिन भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम ने 5वीं महिला AIBA वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती थी। और 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीन को गैर सदस्य पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा दिया था।
जी बिल्कुल।
और आज सवेरे में अब वक्त हुआ है उन महान व्यक्तियों को याद करने का जिनकी आज पुण्यतिथि है। इस क्रम में सबसे पहले हम याद कर रहे हैं भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा को। आज उनकी पुण्यतिथि है। आधुनिक भारत की बुनियाद रखने वाली औद्योगिक हस्तियों में जेआरडी टाटा का नाम सर्वोपरि है। उन्होंने देश की पहली वाणिज्यिक विमान सेवा टाटा एयरलाइंस शुरू की थी जो आगे चलकर भारत की राष्ट्रीय विमानन सेवा एयर इंडिया बन गई। इस कारण से जीआरडी टाटा को भारत के नागरिक उड्डयन का पिता भी कहा जाता है। जेआरडी टाटा भारत की पहली लाइसेंस प्राप्त पायलट थे। जीवन के आरंभिक दिनों में वो एविएशन की दुनिया की अग्रणी शख्सियत लुइस ब्लेरियात से बहुत प्रभावित थे और इसी कारण उन्होंने इसे करियर के रूप में अपनाया। 10 फरवरी 1929 को जेआरडी टाटा को पायलट का लाइसेंस दिया गया और ये पहला मौका था जब भारत में किसी व्यक्ति को पायलट का लाइसेंस जारी किया गया था। जेआरडी टाटा के योगदान के कारण उन्हें दुनिया भर के तमाम पुरस्कारों से नवाजा गया। 1954 में फ्रांस ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार लीजन ऑफ द ऑनर से नवाजा। 1957 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से अलंकृत किया और 1988 में उन्हें गुगेनहाइम मेडल फॉर एविएशन प्रदान किया गया, जबकि 1992 में भारत सरकार ने अपने सपूत को देश के सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से नवाजा।
And Mukesh, before I speak about the legend who is known as the Quiet Beetle, let's listen to this song first and I will speak more about this personality later.
I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. Got my mind set
on you. So, I am talking about George Harrison, Mukesh, who was an English musician, singer, songwriter, and music and film producer who achieved international fame as the lead guitarist of the Beatles. And very truly, he was called the Quiet Beetle. Harrison embraced Indian culture and had broadened the scope of popular music through his incorporation of Indian instrumentation and Hindu-aligned spirituality in the Beatles' work. His songs for the group included Taxman, Within You, Without You, While My Guitar Gently Weeps, Here Comes the Sun and Something. But let's listen to While My Guitar Weeps, jahan pe Eric Clapton was on the lead guitar.
I look at the floor and I see it needs sweeping. Still my guitar gently weeps.
And after the band's breakup in 1970, Harrison released the triple album All Things Must Pass, a critically acclaimed work that produced his most successful hit single, My Sweet Lord, and introduced his signature sound as a solo artist, the slide guitar.
और अब हम याद कर रहे हैं प्रसिद्ध कवि और लेखक ओंकार नाथ श्रीवास्तव को। आज उनकी पुण्यतिथि है। प्रोड्यूसर के तौर पर वो बीबीसी हिंदी सेवा से जुड़े थे। वो बीबीसी हिंदी सेवा के उप प्रमुख भी रहे थे। उन्होंने बीबीसी हिंदी सेवा की भाषा और शैली को गढ़ने में बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाई थी और उन्हें न सिर्फ बेहतरीन प्रसारक बल्कि एक भाषाविद और साहित्यकार के रूप में भी याद किया जाता है। हिंदी साहित्य के जानकारों के बीच उनका नाम आदर के साथ लिया जाता था और वो कवि हरवंश राय बच्चन के सबसे प्रिय शिष्य के तौर पर भी जाने जाते हैं। ओंकार जी की एक कविता की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। कहीं एक छोटा सा घर हो, कोई बढ़ता हुआ गांव या पिछड़ा हुआ शहर हो, वहीं एक छोटा सा घर हो।
जी, so next on our list is Cary Grant, who was an English-born American actor known as one of the classic Hollywood's definitive leading men. He was known for his transatlantic accent, debonair demeanor, light-hearted approach to acting, and sense of comic timing. And here, Mukesh, we are going to listen to Frank Sinatra presenting an honorary Oscar to Cary Grant and at the 42nd Annual Academy in 1970. So let's listen to this.
This year, the Academy, in order to express its appreciation to one of its members for a unique screen career, has voted an Oscar to Mr. Cary Grant for sheer brilliance in the acting business. No one's brought more pleasure to more people for as many years as Cary.
और प्रसिद्ध लेखिका इंदिरा गोस्वामी की आज पुण्यतिथि है। उन्हें असमिया साहित्य की सशक्त हस्ताक्षर माना जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित इंदिरा गोस्वामी ने असम की चरमपंथी संगठन उल्फा यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम और भारत सरकार के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने की राजनीतिक पहल करने में अहम भूमिका निभाई थी। और अपने सेवा कार्यों के लिए प्रसिद्ध ठक्कर बप्पा की आज जयंती है। इनकी सेवा भावना के स्मरण करके ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, जब जब निस्वार्थ सेवकों की याद आएगी ठक्कर बप्पा की मूर्ति आंखों के सामने आकर ठहर जाएगी। तो श्रोताओं, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि आज का आज सवेरे कार्यक्रम यहीं समाप्त किया जाए। तो अनुमति दें मुकेश कुमार और रेणु कटारिया को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की। नमस्कार, नमस्कार।